ओम शांति। प्रभु तेरे रंग में रंग गए हम सब। कौन कौन से रंग हैं प्रभु के? प्रेम का, आनंद का, खुशी का, शांति का, शक्ति का और ज्ञान का, गुणों का और कौन कौन से रंग हैं? है जी, श्रेष्ठ संग, दृष्टि के रंग, पिचकारी, भिन्न भिन्न रंग की पिचकारियां। तो आज बाबा ने हम सबको बहुत सारे रंगों से रंगा है। पवित्रता का रंग। कौन कौन किससे मिलने आया आज? होलीएस्ट बाप अपने होलीएस्ट हाईएस्ट बाप अपने होली हैप्पी हंसो को मिलने आए। होली हैप्पी बच्चे जो है तो मिलने आए हैं। तो बाबा ने हमारे हमेशा हमारे अनादि आदि स्वरूप को देखते हैं कि ये बच्चे कितने होली हैं और हैप्पी रहते हैं। और क्या क्या देखा बाबा ने? होली हैप्पी अर्थात पवित्रता, और हैप्पी अर्थात सदा खुश। बाबा ने कहा खुशियों के गीत गाते रहते हैं, सदा स्नेह के गीत गाते रहते हैं और ज्ञान अमृत का शक्तिशाली ज्ञान अमृत पीते रहते हैं और नाचते गाते रहते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों की जो ईश्वरीय जीवन के उमंग उत्साह है वो हम सबका देख रहे थे कि हमारे जीवन में पहले उमंग उत्साह था जीवन में, इस पिछले जन्म में, ब्राह्मण जीवन से पहले का जन्म, उसको कहते हैं पिछला जन्म, क्योंकि अभी तो नया जन्म मिला, नया जन्म नया संसार आज भी बाबा ने जिक्र किया। तो हमारे जीवन में बाबा ने जैसे कैसा जीवन बन गया हुआ था, निर्जीव था एकदम, अब जैसे जीव हो गया एकदम, है ना, जैसे जड़ हो गया था। अगर हमारी सोच भी तो कैसी सोच थी, है ना, संकुचित सोच, हमारी दृष्टि कैसी थी, हमारी वृत्ति कैसी थी, हमारी बोल कैसी थी, हमारी भावनाएं कैसी थी, हमारा व्यवहार कैसा था, संबंध संपर्क कैसे थे, हमारी मित्र मंडली कैसी थी, टोटल चेंज कर दिया। कितना बड़ा बाबा ने हमारे अंदर, हम सब आत्मों के अंदर इतनी सारी शक्ति भर दी कि एक सेकंड में परिवर्तन हो गया और ये जीवन कितना श्रेष्ठ बना दिया, ऊंच बना दिया। आई के वरदान में था ना, ऊंचा बाप, ऊंचे बच्चे, ऊंचे कर्म, और ये ऐसे बच्चे जो शक्तिशाली बाप समान है ना। दुनिया में वीवीआईपी बाबा ने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, तो उनको स्मृति रहती है कि मैं किसका बच्चा हूँ। तो हम सब किसके बच्चे हैं? जितने मर्जी वीवीआईपी लगा दो कम पड़ जाते हैं, है ना। पिछले संडे की मुरली में था ना कि संसार के सारे, संसार की संपत्ति, सारे संसार की प्रॉपर्टी एक तरफ रख दी जाए और आप एक तरफ, तो आप कैसे हो? अमूल्य रत्न हो। कितनी बड़ी हमारी विशेषताएं हैं, लेकिन जब हमको ये स्मृति रहती है तो नशा चढ़ता है, और जैसे स्मृति में स्मृति विस्मृति में बदल जाती है तो सोडा वाटर, कल की मुरली में था ना, सोडा वाटर हो जाते हैं स्मृति और विस्मृति। उस दिन था मुरली में, स्मृति अर्थात क्या और विस्मृति अर्थात क्या, तीन दिन पहले साकार मुरली में था, स्मृति अर्थात क्या और विस्मृति अर्थात क्या, भूलना और अर्थात, ठीक है बात यही है, लेकिन बाबा ने क्या बोला था, स्मृति अर्थात फायदा, विस्मृति अर्थात घाटा है। तो बाबा ने हम सबको कितनी बड़ी स्मृति दिला दी कि सारे संसार की संपत्ति, सारे संसार की प्रॉपर्टी एक तरफ और तुम बच्चे एक तरफ, तो वो भी कम पड़ जाती है। और दूसरा एग्जांपल दिया था, कौन सा, अक्षौणी सेना। कितनी अक्षौणी सेना होती है? 2,70,000 कुछ ऐसा है, उतने सैनिक, उतने हाथी, उतने घोड़े, तो सब एक तरफ और तुम आत्माओं की ताकत एक तरफ। तो हम सब आत्माओं का कितना बड़ा सौभाग्य है, कितनी हम सब आत्माओं में बाबा ने वो शक्ति भर दी है। हम सब जब अपनी शक्ति से अनभिज्ञ रहते हैं, विस्मृत रहते हैं, तो फिर जीवन में दुख, संताप, परेशानी, चिंता, टेंशन, संबंधों में कड़वाहट, है ना, उदासी, ये सब चीजें आक्रमण कर लेती हैं। और जब हमको इन चीजों की स्मृति रहती है तो बड़ी बात भी छोटी लगती है। आज की मुरली में भी था ना, कि छोटी बात को बड़ा नहीं करो, बड़ी बात को छोटा करो, और वो तब होगी जब आप ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएंगे। ऊंची स्थिति पर स्थित होकर कोई भी बात को देखेंगे तो बात छोटी नजर आएगी। तो अगर हमको ये स्मृतियां रहती हैं तो ये स्मृतियां हमको समर्थ बनाती हैं, और इन स्मृतियों में बल भरता है, आत्मा में शक्ति बनाती है, आत्मा में ताकत आती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है ना। आत्मा जैसे चिंतन चलता है, मंथन शुरू होता है ना। तीन दिन पहले भी मुरली में था कि जब आप बच्चे मनन करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे तो नई नई पॉइंट टचिंग होगी, नई नई पॉइंट टचिंग होगी तो उमंग उत्साह बढ़ेगा तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे हाईएस्ट होलीएस्ट बाप के होली हैप्पी हंस बच्चे हो, और तो इसी के आधार पर संसार में आपकी विशेषताओं के आधार पर वो यादगार बनाते हैं, जो हमारे हर कर्म की, हर थॉट की, हर संकल्प की, हर कदम की, दृष्टि की यादगार संसार में बन रही है। कई जगह देखा होगा संसार में, कोई कोई धर्मों में ऐसे हैं, कहीं कहीं ये बाल का दर्शन करते हैं, बताओ, कहीं कहीं कंगी का, सिख धर्म में कंगी का भी, कहीं कड़ा, ये कड़ा जो हाथ में होता है इसकी भी पूजा होती है, कृपाण जो लगाई होती है, पांच कक्के उनके हैं, तो क क ऐसे कहा जाता है। तो संसार में उन धर्म संस्थापकों की, जिन्होंने धर्म की स्थापना की जो अल्पकाल के हैं, उनकी भी गायन पूजन हो रहा है। तो हम तो सारे सृष्टि में ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हैं, तो भिन्न भिन्न रूप में हमारा गायन पूजन होता रहेगा सारे कल्प, अर्थात द्वापर से तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले भी होगा। सम्मान देंगे जो प्रजा होगी या सम्मान वाले होंगे, सब सम्मान देंगे। तो सारा यादगार हमारा केवल संगमयुग का आधार है। बाबा ने कहा ये संगमयुग उत्सव का युग है, उत्साह का युग है ना, ये कमाई का युग है, चढ़ती कला का युग है, उड़ती कला का युग है। ये संगमयुग हमेशा खुशी में रहने का है, मौजों का युग है। आज भी मुरली में था ना, मौजों का युग। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी होली मनाते हो, तीन प्रकार से होली मनाते हैं। वैसे तो और भी मुरली में और सारी बातें भी हैं, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने तीन प्रकार की होली का वर्णन किया है। तो तीन प्रकार की होली कौन सी बताई? पहले वो होली जलाते हैं, दूसरा रंग में रंग जाते हैं, और तीसरा फिर मंगल मिलन मनाते हैं। तो इसका बाबा ने कंपैरिजन किया, इस मुरली में कंपैरिजन है, हम क्या करते हैं वो क्या करते हैं। तो हम होली जलाते हैं अर्थात, हाँ, तुम बच्चे पुराने स्वभाव संस्कारों को योग अग्नि से भस्म करते हो, और वो जलाते हैं। वो क्या जलाते हैं? लकड़ा, लकड़ी, लकड़ा माने गुजराती में और हिंदी में लकड़ी, तो कोई भी लकड़ी तो लकड़ी रहेगी, चाहे गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो, तो लकड़ी जलाते हैं। और हम कौन सी लकड़ी जलाते हैं? पुराने संस्कार स्वभाव की, है ना, पर चिंतन की, पर दर्शन की, पर मत की, ये अंदर में जो छोटी छोटी सूखी लकड़ियां हैं जिनको जल्दी आग लग जाती है, तो उनको हम जलाते हैं। जो भी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं, कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जिनके कारण आत्मा जो है दुखी रहती है, कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं? क्योंकि ईर्ष्या और क्रोध, नफरत और घृणा, रोना, रूठना, फीलिंग में आना, अभिमान में आना, ईर्ष्या, द्वेष, और तो ये सारे संस्कार हमारे योग अग्नि में भस्म होते हैं। और कौन सी अवस्था में हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं? जब हम अशरीरी अवस्था में आत्मा समझ, मुख्य जो पहला पाठ है, वास्तव में बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी पक्का होना है, होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे तो अशरीरी अवस्था का अनुभव नहीं होगा। भले अवस्थाएं वो हमारी बुद्धि में रहेंगी, हमारी स्मृति में रहेंगी, लेकिन वो बुद्धि तक ही सीमित रह जाती हैं, अनुभव में नहीं आती हैं। इसलिए पहला पाठ है जो बाबा कहते हैं लिख लिख के बाबा ने डायरी भर दी, तो सचमुच लिखना भी बहुत लाभदायक है। ये जितना हम अपने कर्मेंद्रियों को लिखने में बिजी करते हैं, वो लिखते लिखते भी अनुभव करना है कि मैं आत्मा इन हाथों से लिख रही हूं, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, बिल्कुल अलग से बैठी हुई हूं, इन खिड़कियों से झांक रही हूं, है ना, जैसे मकान मिला हुआ मुझे, मैं आत्मा इस कमरे में बैठी हूं और इन खिड़कियों से देख रही हूं, अंदर में मैं चमक रही हूं एकदम, मैं जब चाहे इन खिड़कियों से बाहर चले जाऊं और जब चाहे अंदर आ जाऊं। तो इस सूक्ष्म रूप से हमें खुद ही अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर हमको अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है, और इस स्वयं ही करना है। क्योंकि हमारा पहला पाठ पक्का होगा तो पहला पाठ पक्का होने से बाबा का सारा ज्ञान फिर हमको याद रहना शुरू हो जाएगा। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तो ये ज्ञान खिसक जाता है, याद नहीं रहता है, क्योंकि ये ज्ञान आत्मा के लिए दिया जा रहा है। और हम देह समझकर ज्ञान सुनते हैं तो वो भूल जाता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस अर्थात जो भी आत्मा से संबंधित सारी बातें वो भूल जाती हैं, डिफरेंट है। ये बॉडी कॉन्शियस माना रावण की प्रॉपर्टी है। बाबा ने कहा ना, तुम रावण के बहुत पुराने ग्राहक हो, वो छोड़ेगा थोड़ा नहीं ऐसे। तो ये पूरी रावण की संपत्ति एक हिसाब से तमो प्रधान शरीर हो गया हुआ है। तो सबसे पहला पाठ जितना हमारा पक्का होता जाएगा, आत्मा जितनी सतो अवस्था सतो प्रधान बनती जाएगी, उतना ज्ञान स्मृति में रहेगा, और ज्ञान स्मृति में रहने का फिर मजा आएगा, आनंद आएगा, उसका सुख मिलेगा। अगर बॉडी कॉन्शियस की अवस्था में हम सुनते हैं ज्ञान, चाहे मुरली सुनते हैं, चाहे कोई कला सुन रहे हैं या कोई गीत सुन रहे हैं, तो वो थोड़ी देर उसका नशा रहता, परमानेंट नहीं होता, अस्थायी पर टेम्परेरी रूप रहता है। इसलिए अपने जीवन में स्थायी रूप से अतीन्द्रिय सुख का अगर अनुभव करना है तो हमको ये पहला पाठ बहुत बहुत पक्का करने की आवश्यकता है, और इसके आधार पर ही हमारा योग अच्छा लगेगा, और इसी के आधार पर ही हम बाबा से मिलन बना सकते हैं, और इसी के आधार पर ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे अर्थात तो इतना विस्मृति हो जाएगी कि जैसे वो हमारी चीज थी नहीं, दूर हो जाएंगे। विकर्म विनाश होते हैं, जलते हैं। अगर अच्छा मान लो जल गए तो फिर कल्प के बाद कैसे आएंगे, विस्मृत हो जाते हैं बिल्कुल, वो फाइलें बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, वो उनसे हमको एक प्रकार की घृणा आ जाती है, अर्थात उनको हम टच ही नहीं करते हैं बिल्कुल। तो जितना हम इस अवस्था को हम मजबूत करेंगे तो हमारा योग भी शक्तिशाली होगा, और योग फिर नेचुरल हो जाएगा। आज बाबा ने बताया ना, तुम सहज योगी हो। बाप बच्चों की विशेषताओं, एक एक बच्चे की विशेषताओं को देखते हैं, हर बच्चा मेरा सहज योगी बच्चा है, आज की मुरली में था लास्ट पैराग्राफ। तो सबसे पहले होली जलाते हैं, तुम बच्चे अपने विकर्मों को जलाते हो, विकर्मों को योग अग्नि से भस्म करते हो, और वो संसार में लकड़ी जलाते हैं, गोबर कीड़ा कूड़ा किचड़ा जलाते हैं। तो यहाँ हम आत्माएं जो अंदर हमारे अंदर कूड़ा किचड़ा है, बॉडी कॉन्शियस है, नेगेटिव अनेक प्रकार के अंदर में बातें हैं, पुराने स्वभाव संस्कार हैं, पुरानी विस्मृतियां हैं, देह के संबंधों में जो है हमने अंदर में रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे बाबा की याद से वो धीरे धीरे लोप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया जलाना। और दूसरा क्या करते हैं तुम बच्चे, प्रभु के रंग में रंग जाते हो, और इसका यादगार वो क्या मनाते हैं, वो भी पिचकारी, वो भी रंग में रंग जाते हैं। तो तुम बच्चों को प्रभु के संग का रंग लग जाता है, और वो संसार में रंगों की होली खेलते हैं। और तीसरी मिलन मनाते हैं, तो तुम बच्चे मिलन मनाते, मंगल मिलन मनाते हो, और वो आपस में मिलते हैं। तो ये मंगल मिलन मनाने से क्या होता है, फिर तुम बच्चे महान बन जाते हो, और जब महान बन जाते हो तो तुम्हारी यादगार संसार में वो मनाना शुरू कर देते हैं। तुम सदा खुश रहते हो तो वो भी सदा खुश रहते हैं, एक दिन के लिए रहते हैं, लेकिन तुम बच्चे सदा खुश रहते हो, तुम दुख को छोड़ देते हो, वो एक दिन के लिए छोड़ते हैं, लेकिन फिर जैसे को तैसे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का ये संगम युग है ही उत्सव का युग है, उत्साह का युग है। ब्राह्मण जीवन में उत्साह नहीं होगा तो कब होगा। सारे कल्प में ये जो ब्राह्मण है ये चोटी है, चोटी अर्थात टॉप प्वाइंट है ये। तो इसमें ही हम सारे कल्प में, सारे सृष्टि चक्र में, इसमें हम टॉप प्वाइंट पर खड़े हैं। इसमें हमें हर बात की नॉलेज है, जो बाबा साकार मूल्य में कहते हैं तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत के जानते हो, तुम बच्चे हर एक की बायोग्राफी को जानते हो, क्योंकि इस समय तुम संगम युग पर खड़े हो। संगम युग माना पुरुषोत्तम संगम, उत्तम से उत्तम पुरुष, देवताओं से भी उत्तम बनने वाला युग है ये। तो इस समय हम टॉप प्वाइंट पर खड़े हैं। तो ये तीन प्रकार की होली, तो बाबा ने कहा ये हर तुम बच्चों की जो विशेषता है इस विशेषता के आधार पर वो होली मनाते हैं। तो अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो मन संसार की आत्मा अच्छा सोचेंगे, अगर हम बुरा सोचते हैं तो संसार की आत्मा बुरा सोचेंगे, अगर हम अंदर में रोते रहते हैं तो संसार की आत्मा रोती रहेंगी, अगर हम खुश रहते हैं तो संसार की आत्मा खुश रहेंगी, अगर हम दुखी हैं तो वो दुखी हैं। तो सारा आधार कौन है, क्योंकि सृष्टि के बीज है। जैसे बीज रूप बाबा है, हम बच्चे भी मास्टर बीज रूप हैं। तो जो बीज होगा फल तो वैसे निकलेगा, तो हम पूर्वज हैं, तो जैसे पूर्वज होंगे बाकी आगे भी उसकी फैमिली भी वैसी होगी। तो सबसे पहली बात, बाबा ने तीन प्रकार की होली, और फिर इस होली से और क्या होता है, दूसरी बात कौन सी बताई, और क्या होता है? नहीं, दूसरी बात बताई कि मूड कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है, भारी भले वो एक दिन के लिए होता है लेकिन एकदम हल्के हो जाते हैं। और मूड हल्का कैसे होता है, क्योंकि बाप एकदम बिंदु है तो वो भी हल्का है, तुम बच्चे भी हल्के होते हो तो संसार में भी उनका मूड हल्का हो जाता है। एक दिन के भले लिए उनका मूड हल्का हो जाता है, भारीपन खत्म, और वो सारी बातें भूल जाते हैं, जो भी पुराने से पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं। तो तुम्हारी दुश्मनी कौन सी थी, बाबा ने कहा तुम बच्चे भी, तुम बच्चों की वो आत्मा की पुराने स्वभाव संस्कार की कड़ी दुश्मनी है, तुम बच्चे उसको भूल जाते हो, है तो अंदर ही है ना, लेकिन बाबा के साथ मिलन मनाने से ये सब बातें विस्मृत हो जाती हैं, क्योंकि हमको बड़ा लड्डू मिल गया है, अब छोटा तो छूट ही जाएगा ना अपने आप, कितनी बड़ी बात है। तो जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है, स्मृति में रहता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी अवस्था दिन प्रतिदिन प्रगति को प्राप्त होती रहेगी। हाँ, बीच बीच में कभी अप डाउन होता रहता है फिर भी, क्योंकि स्वास्थ्य संस्कार तो बहुत पुराने जड़ जमाकर बैठे है ना, आक्रमण करते हैं, अचानक अटैक नए नए रूप से आते हैं, है ना, होता है ना। ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो नए नए, तो बाबा हमारी उंगली पकड़ के रखता है, बहुत उमंग सा आता है, सेवाओं में जाते हैं, सब ब्राह्मण हमको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं, नए बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो जैसे जैसे फिर वृद्धि को आगे जाते जाते हैं तो हमको ज्ञान के नए नए रहस्य पता चलते हैं, फिर ज्ञान की बारीकी का पता जब चलता है तो पता चलता है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। पहले थोड़े कहते हैं, उसमें थोड़ा सिखाते हैं बहुत सारी बातें, कोर्स में तो हमको क्या कह रहा है, जरा स्वर के सीन सीनियां दिखाई जाते हैं, तुम ये बनेंगे बस, बाकी बीच में जो करना है वो वाला तो बाद में पता चलता है, पहले टेम्परेशन दिखा देते हैं, बस विनाश होगा तुम देवता बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे कैसे वो प्रोसेस तो बाद में चालू होता है, 2 साल के बाद ही। पहले तो ब्राह्मण परिवार कितना प्यारा लगता है, फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा ना विशेषताएं, एक दो की विशेषताओं की वैरायटी खुशबू, अगर वो हमारा चश्मा उतर जाता है विशेषताओं का, तो जो बहने पहले देवियां लगती हैं, बाद में क्या लगता है, काली देवी। भाई भी ऐसे, माना कोई भी आत्मा में स्वास्थ्य संस्कार तो है, तो हमको ये कि इस विशेषता को हमको हमेशा ध्यान में रखना है, इस बात का कि हमको हर एक की विशेषता देखनी है, क्योंकि बाबा किसी के अवगुण नहीं देखते हैं, तो हम बाबा के बच्चे हैं ना, जैसा बाप वैसे बच्चे, आज की मूल्य में था जैसे बाप वैसे मैं, ये स्मृति स्लोगन है, स्मृति का स्लोगन आपको वरदान के रूप में मिला हुआ है। तो जैसे बाबा सबकी विशेषताएं देखते हैं, हम भी सबकी विशेषताओं को देखना है, पर्दे के पीछे कहीं बाबा ने कहा विशेषताएं शिफ्ट तो नहीं की है, कभी बिल्ली आ जाती, कभी चूहा आ जाता है, कभी कुत्ता आ जाता है, ऐसा तो नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और है और बाहर कुछ और है, बाहर हम भले किसी के सामने सामने महिमा कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और कह रहे हैं। तो ये हमें स्वयं को ही जांच करनी है कि सचमुच हमारा वास्तविक परिवर्तन जो होना चाहिए वो दिन प्रतिदिन हो रहा है, या वहीं की वहीं गाड़ी है, या वहीं नाव अभी निकली नहीं है, रात को चप्पू चलाए जा रहे हैं, सवेरे देखा तो वहीं की वहीं खड़ी है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में हम अपने आप से धोखा तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अंधेरे में तो नहीं रख रहे हैं। तो स्वयं की जांच बड़ी बारीकी से करनी है। बाबा ने आज दी ना संपूर्णता का दर्पण तुम्हारे पास में, आज किस लोगों में था, है ना, देखो उसमें कहां कहां लगाव है और चेक करो और उससे मुक्त बनो, और स्वयं को ही चेक करना, अंत में हमारे साथ कोई जाने वाला थोड़ा नहीं है। बाबा संपूर्ण रूप से सारा ज्ञान हमारे सामने रख दिया उसने, अब उसको हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, उस ज्ञान को कितना हम आत्मसात कर रहे हैं, कितना हम अपने जीवन से लगा रहे हैं, कितना हम स्वयं का परिवर्तन कर रहे हैं, कितनी हमारी जांच है, अपने ऊपर नजर है, कितना हम ध्यान रख रहे हैं, वो हमें स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है, वो बाहर से नहीं हमारे मुख से, तो अंदर ही अंदर हमको पता है ना कि मैं अभी अंदर से कितना बदला हूं, अंदर में मेरी दृष्टिवृत्ति कहां तक स्थिर है, अभी कहां कहां मेरी दृष्टिवृत्ति चंचल हो रही है, कहां कहां हमारे बोल फिसल जाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं, जो नहीं सोचना वो सोच ले रहे हैं, जो नए कर्म करने हाथ मां चले जाते हैं, बाबा की श्रीमत के अनुरूप क्या हम चल रहे हैं, या श्रीमत भी श्रीमत के बीच में हम अपनी मन मत अपनी सुविधा के अनुसार, कब हम श्रीमत के अंदर में मन मत मिक्स करते हैं। जब बाबा की श्रीमत के ऊपर चलने की हमारे में ताकत नहीं होती है तो हम अपनी सुविधा अनुसार अपने उसकी मत कर देते हैं कि बाबा ने तो बोला ना माया तो आती है कोई बात नहीं, तो वहां हम अपनी मत मिक्स कर देते हैं और वो हमारा फिर धीरे धीरे संस्कार पक्का हो जाता है और वो संस्कार पक्का होता है फिर तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म रूप से बाबा की जो श्रीमत है अपने स्वयं के स्तर पर ही जांच करके उस श्रीमत पूरा चलने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा हर बच्चे की विशेषताओं को देखते हैं तो हमें भी हर एक आत्मा की विशेषताओं को देखना है। हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर विशेषताओं की खान है एक, लेकिन वो देखने की हमको आदत डालनी पड़ेगी। नहीं तो होता है कोई अगर हमारे किसी किसी के ऐसे संस्कार होते हैं कि वो गलती दिखाई देगी, चलो अच्छा गलती दिखाई भी दे लेकिन उसका हम वर्णन नहीं करें, उसमें हम ये देखें कि ये वाली गलती मेरे में तो नहीं कहीं, और किसी की गलती हमको दिखाई दे रही तो उसका वर्णन नहीं करना बल्कि हमको शुभ चिंतक बनना उसके प्रति, शुभ चिंतन से उसकी गलती को खत्म करना है अंदर ही अंदर। जैसे हम स्वयं के स्वभाव संस्कार को भस्म करते हैं ऐसे दूसरे की गलतियों को भी अपनी गलती समझ के हम भस्म करेंगे तो कहेंगे सचमुच हम ब्राह्मण परिवार में एक दो के सहयोगी हैं। स्थूल रूप से सहयोगी बनना बड़ा आसान है, वो तो मैं एक दो को अगर स्थूल चीज की आवश्यकता है ले दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी कमी कमजोरियां हैं उनके उनको उन कमी कमजोरियों से मुक्त करने के लिए सूक्ष्म रूप से सहयोगी बनना ये वास्तव में सच्ची मन से सेवा है। तो क्या सचमुच हमारा मन बुद्धि इतना क्लियर होता जा रहा है? बाबा ने कहा ना मन बुद्धि बहुत क्लियर चाहिए, अंत के भी बाबा ने आज बात की। तो हर एक की विशेषताओं को देखना है, तो बाबा कहते हैं ये जो है भूलने की है, जो भी कमी कमजोरियों को भूलने का दिन है, होली का दिन है, इसमें मूड हल्का रहता है। और क्या बताया आज बाबा ने मुरली में आगे? हाँ बैग बैगेज, किसको बोला था? ये टीचर बहनों से बाबा ने मुलाकात की थी, तो बैग बैगेज हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए दादियों का उदाहरण कई बार देते हैं क्लासों में, हम सुनते हैं कि दादियां जब सेवा करके आती थी अभी पहुंचे नहीं है 5 मिनट हुए और बाबा पहले से तैयार रखते थे, जाओ बच्ची अभी जाओ, तो दादी कहती बाबा तो अभी तो पहुंचे हैं, तुम्हें कौन कह रहा है? बाबा ऐसे कहते होंगे तो देखो बाबा को जानते हमें 5 मिनट बोला ट्रेन आने के लिए रह गए, फिर भी बाबा उनको भेज देते थे। हाँ गोली तो लेने की जरूरत नहीं है, वो भी बताया कब बताया गोली लेने की जरूरत नहीं है, जब बच्चे रात को सोते हैं तो गोली लेने की जरूरत नहीं है। कौन सी बीमारी का जिक्र किया? ब्लड प्रेशर। हाँ तो गोली कौन सी है? हाँ बाबा मैं आपके साथ सो रहा हूँ ये है गोली, तो ये गोली हमेशा हमको खाते रहना है, कब? रात को भी, जब भी हम विश्राम स्थल पर जाते हैं तो उसमें हमको बाबा की गोद में सो जाना है, नहीं तो वो बीमारी हमको चारों तरफ से घेरेंगी। अच्छा अगर बीपी नहीं है, अच्छा मान लो उसमें हेल्थ ठीक है, आप हमें कोई बीमारी नहीं है और बिना याद के हम सो जाते हैं तो क्या होगा? फिर तो स्वप्न आएंगे, डरावने सपन, भूत प्रेत आ सकते हैं या पिछले अपने संस्कार भूत प्रेत के रूप में हमें तंग करेंगे, रात को नींद बार बार फिटेगी और नींद टूटती है तो फिर सवेरे उसका प्रभाव मृत्युले पर पड़ता है। तो सोते समय हमको एक आदत डालनी है 15 मिनट कम से कम बाबा को बड़े प्यार से याद करके सो जाना है, क्योंकि माया उसी में आक्रमण करती है, क्योंकि हम शांति में जा रहे हैं तो, और माया तो अंदर में कितने जन्मों की बैठी है, 63 जन्मों की, अभी हम एक जन्म की माया से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो 63 जन्म की माया अगर हमको पता चल जाए कि कहां कहां हमने क्या किया किया हुआ है तो जी नहीं पाएंगे हम लोग, पागल हो जाएंगे एकदम। तो बाबा की कितनी कृपा है, कुदरत में कितना अच्छा नियम है जो हमको पिछले जन्मों की बातें विस्मृत हो जाती हैं, अगर वो सारी बातें स्मृति में रहें तो क्या हो जाएगा, कितनी हालत खराब हो जाएगी। और ये एक जन्म का नियम संभलता पा रहा है, एक जन्म क्या, एक दिन में किसी से अगर थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो सारा दिन क्या होता रहता है, बाबा कितना रहम दिल है और फिर भी हमको धीरे धीरे नई नई बातें, मीठी मीठी बातें सुना सुना के हमको हमारे में उमंग उत्साह भरता रहता है, हमारे में शक्ति भरता रहता है, ऊर्जा भरता रहता है। तो क्या करना है कि बाप के साथ ही सोना है, और क्या बाबा ने कहा कि जो पार्ट आदि में है वो अंत में होगा, आदि में क्या हुआ था साक्षात्कार का पार्ट हुआ था और वो अंत में भी होगा, लेकिन टचिंग उसकी होगी जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। आदि में बाबा ने कहा कोई दवाई नहीं खाते थे, मलाई मक्खन खाया और ठीक हो जाते थे, लेकिन अंत में मलाई मक्खन मिलेगा, दाल रोटी मिलेगी, है ना। बड़े दादी जी थे तो उस समय दादी जी वो उसको मक्खन और छोटी रोटी, मक्खन मानी कहते थे उसको, मक्खन मानी वो खिलाते थे इधर सारे मधुबन वालों को। कभी कभी दादियां बोली दादी, बड़े दादी, गुलजार दादी होते थे तो यहाँ खिलाते रहते थे। पहले वो दिन भी प्यारे थे और ये दिन भी प्यारे हैं। दिन प्रतिदिन परिवर्तन की प्रक्रिया किस तरीके से बदलती जा रही है, तो हर सीन का हमको मजा लेना है, क्योंकि ये है ही मौजों का युग। मौजों के युग में क्या क्या है, बाबा ने कहा तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह हो, बेप्रवाह बादशाह हो। संसार में जो वो कौन कौन से चार पांच बातें बताई, संसार में कौन कौन से जो शास्त्रवादी हैं, वेद पाठ करने वाले हैं, जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं, जो नंबर वन साइंस दान है, जो नौदा व्यक्ति करते हैं, उनसे भी तुम नंबर वन आत्माएं हो। वो सब फिक्र में जी रहे हैं, तुम बेफिक्र बादशाह हो, बेप्रवाह बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह हो, बिन कौड़ी बादशाह हो। तो कितने बाबा ने हमारे मौजों का जीवन लगा दिया, तो ये मौजों का जीवन है, मूंजने का जीवन नहीं है। इसलिए बाबा ने इस जीवन में पक्का रंग, डबल विदेशियों से बाबा ने बात की कि डबल विदेशियों को पक्का रंग लगा हुआ है, कच्चा रंग तो नहीं लगा हुआ है, पक्का रंग है तो या कभी कच्चा कभी पक्का। और डबल विदेशियों के साथ और क्या कहा बाबा ने कि कोई भी पुरानी बात को याद नहीं करना, गलती से भी याद नहीं करना। कितनी बड़ी बात है, जो हो गया हो गया, उसको कर थोड़ा नहीं भूल सकते। लेकिन कभी कभी वही बात तो हमको तंग करती है और हमको पता कि हम उन बातों को कुछ कर नहीं सकते, वो तो खत्म होगी, तो हमको डेली फुल स्टॉप लगाने की आदत थी। जो हो गया वो काम खत्म हो गया, उसको चिंतन नहीं करने का। लेकिन उसी बात को पकड़ पकड़ के हम दुखी होते रहते हैं। अब जो पास्ट वाली बातें जो बीत चुकी हैं, या तो पास्ट के बारे में पकड़ के रखा हुआ है या फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट जो वो खत्म होता जा रहा है, प्रेजेंट का सुख नहीं पा रहे हैं। तो वास्तव में जीना प्रेजेंट मोमेंट में, ये सबसे बड़ी कला जीने की, कि जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में अभी का श्वास ही है, फ्यूचर का तो भरोसा नहीं है, पास हमारे हाथ से निकल गया है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको बाबा नहीं कुछ कर सकता है, खत्म हो गया वो। तो जीना वास्तव में हमको प्रेजेंट मोमेंट में है, ये हमारे लिए सुखदायक। अगर अभी हम अच्छा बीज बोएंगे, अच्छे संकल्पों का बीज बोएंगे, अच्छी धरनी तैयार करेंगे, उस बीज की देखरेख करेंगे, उसको धूप और पानी देंगे, तो नेचुरली फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में हमको अच्छे संकल्पों के बीज बोने हैं। वैल्यूएबल रत्न कौन, बाबा ने बताया ना उसमें अमूल्य रत्न हो, तो अमूल्य रत्न की निशानियां क्या है, जिसका हर संकल्प अमूल्य हो, जिसकी दृष्टि अमूल्य हो, जिसका बोल अमूल्य हो, जिसके कर्म अमूल्य हो, सुखदायी हूं, एक दो को उमंग सा दिलाने वाले हूं, कोई उदास है तो उसको खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाने वाले हूं। तो ये जीवन है हमारा, कितना श्रेष्ठ जीवन बाबा ने बना दिया। बेफिक्र बादशाह बन गए, बिन कौड़ी बादशाह, कौड़ी है नहीं और बादशाह हो गए। बताया सारे संसार की प्रॉपर्टी संपत्ति एक तरफ और तुम एक तरफ हो, अक्षौणी सेना एक तरफ तुम एक तरफ हो, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो मौजें ही मौजें हैं, मूंज नहीं है। गीत गाते हो, कौन से गीत नहीं गाने और कौन से गीत गाने हैं, आय की मूल्य में था। हाँ, ये हैं पुराने गीत, कौन कौन से, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे ऐसे होना चाहिए, बहुत सारे गीत हैं। ये कि चिंतन का टॉपिक है कि पुराने गीत कौन से हैं और नए गीत कौन से हैं। नए गीत कौन से हैं, ओहो वाह वाह, ये बाबा का ऑल टाइम फेवरेट गीत है, कौन सा, वाह 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 वाह, वाह बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह। तो ये क्या क्यों के गीत गाना बंद, खुशी के गीत गाने, उमंग उत्साह के गीत गाने, खुद भी खुशी में रहना है और दूसरों को भी खुशी में रखना है, तो ये प्रयास होना चाहिए। और क्या कहा बाबा ने आज, नदियां सागर में समा जाएंगी, टीचर के साथ मुलाकात, नदियां सागर में समा जाएंगी। ये बाबा ने टीचर से मुलाकात की कि जो बच्चे लाइन के लिए उनको तो टचिंग होगी, लेकिन टीचर के लिए ये बोला कि हो सकता है तुम बच्चों की आवश्यकता वहीं पर होगी, क्योंकि तुम आत्माओं, तुम्हें और अन्य आत्माओं को भी शक्ति देनी है ना, तो बाबा वहां आपको टचिंग कराएगा। लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशंस बताई, एक सेकंड में अगर लगाव कहीं चला गया, मेरा जिज्ञासु, मेरा सेंटर, ये मेरी चीजें हैं, उसको भी ज्ञान देना चाहिए था, अगर इन चीजों में रह गए तो गए। कितना सूक्ष्म ज्ञान है, किस पथ पर हमने कदम रखा हुआ है, कितना सहज है। जलेबी जैसा है, है मीठा मीठा लेकिन टेढ़ा मेढ़ा बहुत है। जलेबी जैसा सीधा है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि की लाइन सदा क्लियर होगी। और लाइन क्लियर कैसी होगी? ये ज्ञान ही लाइन को क्लियर करेगा, नहीं तो लाइन टेढ़ी जलेबी की तरह जाती जाएगी। और क्या कहा बाबा ने? क्लीन और क्लियर। हाँ, क्लीन और क्लियर। और क्या बताया आज की मुरली में? सफलता किसे मिलेगी? सफलता के लिए बाबा थे और बहुत सारी बातें अभी तक। वो पिचकारी हो गई पहले, ज्ञान की पिचकारी, तो उसमें ज्ञान गुण शक्तियां आनंद प्रेम पवित्र सारी पिचकारी। और क्या सफलता के लिए क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप और मैं, है ना, ये स्मृति का स्लोगन वरदान के रूप में मिला है। जब तुम बच्चे इस स्मृति के स्लोगन को वरदान के रूप में अनुभव करते हो तो तुम्हें हर कदम में सफलता का अनुभव होता है। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता की माला तुम्हारे गले में प्रयोगी है। सफलता परछाई की पीछे तरह पीछे आएगी। क्यों? क्योंकि बाबा साथ है उसमें। और ये ब्राह्मण जीवन कैसा है? नया जीवन है। इसमें पुराना सब कुछ खत्म हो गया। इसमें नया रीति रस्म, नए संकल्प, नया स्वभाव संस्कार, नए संकल्प हो गए, नई सोच हो गई, आत्मा की भाषा भी नहीं होगी, है ना। ब्राह्मण आने के बाद हमारा ज्ञान बोलचाल कैसा हो जाता है? जब हम नए नए ज्ञान में आए तो वो सेंटर में जब हम गए तो माताएं बोली मुझे संकल्प आता है। संकल्प कहां से आता होगा? संकल्प क्या चीज होती है? पता ही नहीं है संकल्प क्या होता है। तो टोटल चेंज हो गया, नई चेंज हो गया ना चेंज। कितनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हमारी जीवन कितनी बदल गई है, टोटली लाइफ चेंज होगी। कभी माताओं ने सोचा था कि हम ऐसे पढ़ेंगे? बाबा ने कहा ना उस दिन रोटी बनाते भी क्या सोचो, सुदर्शन चक्र फिरा रहे हैं। हाँ, सारे संसार में अगर कोई ऐसा मिलता तो उसको पकड़िए मेरे पास ले गया हो, किराया बाबा देगा। लेकिन ऐसा नहीं घूमने चले जाओ खाली और लेके ना किसी को, कोई प्लानिंग बनाते रहो। वो भी बाबा ने काल बोला था, खर्चा बाप देगा। अगर कोई कहे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है, परसों के मुरली में था ना, हाँ वो भी बाबा ने बात कही थी। तो ये कितना बाबा इस चीज को महत्व देता कि हर बच्चा जो है इस ईश्वरीय सुख से वंचित ना रहे। कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा हम सबको बताते हैं। और क्या बताया आज की मुरली में? है जी, मधुबन के हाँ, मधुबन में आते हैं दादियों के साथ जिक्र किए, मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने के लिए और मौज मनाते हैं। मौजें ही मौजें हैं, वो उसी पैराग्राफ में आ गया सारी बातें। मधुबन में आते हैं बच्चे रिफ्रेश होने के लिए, बाप के साथ मंगल मिलन मनाने के लिए। और मिलन कब होता है? जब हमारी समानता होती है। एक समानता की और बात थी कि तुम बच्चे यहां आत्मा रूप में रहते हो, भाई भाई की स्मृति में रहते हो, तो समानता हो जाती है। इसी रूप में वो दादा पोतरा एक जैसा हो जाते हैं। होली वाले दिन में दादा भी चाहे पोतरा भी, पोतरा भी दाढ़ी को आंख लगाएगा तो दादा भी कुछ नहीं कहेगा उस समय, है ना। पांच दिन पहले मुरली में था ना कि बाप तुम बच्चों को कहां रखते हैं? सिर पर चढ़ा के रखते हैं, था ना उस दिन साकार मुरली में पांच छह दिन पहले। तो बाबा की कितनी मीठी मीठी बातें हैं जो हमारे जीवन को कितना सहज रूप से परिवर्तन करती जा रही है। लेकिन इनके ऊपर हमको सारे दिन में जो भी हमको टाइम मिलता है तो टाइम, उस टाइम को हमको सफल करने के लिए इन बातों में अपने को इन्वॉल्व रखना है, बिजी रखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। कि ज्ञान जो है ना वो सहज स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को दूसरी बहुत सारी लत पड़ी हुई है, दूसरी बहुत सारी आदतें हैं, वहां खिंचती है बार बार ना चाहते भी। और आज तो अनेक प्रकार की माया चारों तरफ से आक्रमण कर रही है। अभी दो दिन से ही वो नहीं चल रहा है नेट, इंटरनेट, मोबाइल, तो कई लोग कितने बेचैन हो जाते हैं। हालांकि ब्राह्मण इतने बेचैन नहीं होते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को पता है ये तो होनी है, जिसको नहीं पता वो बेचैन होते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण बेचैन हो सकते हैं जिन्होंने ज्ञानियों की आदत नहीं डाली है, वो बेचैन हो सकते हैं। इसलिए हमको ये आदत डालनी पड़ेगी पक्की, नहीं तो वो ये आदतें पुराने वाली खींचेंगी, क्योंकि उसमें भी रस तो है, सुख तो उसमें भी है, लेकिन उस सुख का परिणाम दुख है और वो अल्पकाल का सुख है, और वो हमारे हमें अनेक जन्मों की कमाई से वंचित करने वाला सुख है। वो तो माया के गटर में ले जाने वाला सुख है, वो गिराने वाला है वो। हाँ, 17 तरीके के मूल्य में ना अगर गहराई में जाते हो तो क्या मिलेगा? मोती मिलेंगे, और ऊपर ऊपर करेंगे तो मछलियां मिलेंगी, और बड़ी मछली आ गई तो खा जाएगी हमको। एक बाबा ने उस मूल्य में जो संडे 17 तरीके की मूल्य थी 17 अक्टूबर की, एक बहुत अच्छी बड़ी दादी जी के प्रति बात की थी। कौन सी? बहुत अच्छी बात है जो हम सबको करनी है। वो बाबा ने सर्टिफिकेट दिया था कि कोई भी कैसा भी बच्चा है, बाबा दादी ने किसी की बात को दिल में नहीं रखा। अगर कोई गलती होती है किसी की, कोई कुछ हमें कुछ कहता है, किसी की बात को भी दादी ने अपने दिल पर नहीं रखा, तो हम कोई वैसा बनना है। चाहे किसी ने कुछ भी किया हुआ है, हमारे प्रति भी षड्यंत्र रचा हुआ है, या हमारी गिलानी करता रहता है, हमारे पीठ पीछे कुछ बोलता रहता है, सामने कुछ बोलता रहता है, लेकिन हमारे दिल में नहीं वो चीज आनी चाहिए। दिल ये दिल किसका है? ये बाप के रहने का दिल तख्त है। तो ये तख्त कितना प्योर होना चाहिए, कितना पवित्र होना चाहिए। परम पवित्र है सुप्रीम सोल, तो उसको इस दिल में बिठाने के लिए इसकी स्वच्छता कितनी चाहिए। तो इसका स्वच्छता अभियान हमारा हमेशा चलता रहना चाहिए, और ये ज्ञान से स्वच्छ होगा, योग से स्वच्छ होगा। तो डेली हमको इस दिल को बहुत साफ रखना है, सुथरा रखना है, रोज सवेरे परमात्म प्यार से भर लेना है। ज्ञान का झाड़ू और याद का पोंछा ये डेली लगाते रहना है ना। ज्ञान का झाड़ू तो सवेरे मुरली में होता ही है, और योग है माया की डस्ट नहीं आएगी फिर बाद में अगर ये झाड़ू पोछा ठीक नहीं होता तो माया और डस्ट डालती रहती है। तो हमको अपने मन को इतना क्लियर रखना है, इतना शुद्ध रखना है, ताकि अंत में नहीं, अभी भी एक्यूरेट टचिंग आती रहे। हमारे से अगर कोई भी गलती हो तो वो भी बाबा टच कराएगी कि गलत हो रहा है, और उस गलती से रुकने के लिए बाबा हमारे में ताकत बढ़ेगा। ये देहवान बड़ा रुकावट है। चार दिन पहले मुरली में था, देहवान बहुत बड़ी रुकावट है। तो सारा दिन हम देहवान में तो नहीं रहते, इस देह के भान से कितना हम ऊपर उठ के रहते हैं। देह के भान को भूलना है। तो कितने प्रकार की बात है बाबा, वैरायटी आज भी बताया ना, वैरायटी विशेषताओं की खुशबू, कितनी सारी विशेषताएं। तो वास्तव में हम सबको अपनी अपनी विशेषताएं लिखनी चाहिए, किसी को बतानी नहीं है। पता तो होता है हमको कौन कौन सी विशेषताएं, लेकिन वो विशेषताओं को उनमें और दिन प्रतिदिन निखार आता जाए। और ये भी देखना है कौन कौन सी विशेषताएं नहीं है जो होनी चाहिए, जो कि हमको दूसरों में दिखाई देती है, वो भी हमको गैलप करनी है। क्योंकि इतने बड़े संसार का परिवर्तन करना है तो एक व्यक्ति नहीं, सबकी विशेषताओं की रोशनी से पूरा संसार प्रकाशित होना चाहिए। हर एक बच्चे से बाबा प्रत्यक्ष होगा, तो प्रत्यक्ष कैसे होगा? वो डायरेक्ट थोड़ा दिखेगा, हमारे कर्मों से परिलक्षित होगा, वो हमारे कर्मों से पहचान होगी। मनुष्य की पहचान कर्मों से होती है, तो क्या हमारे कर्म उसके जैसे, जैसे बताया ना, जैसा बाप वैसे बच्चे, आज की मुरली में था। तो क्या हमारे कर्म उसके जैसे हो रहे हैं? क्या हमारे चाल चलन उसके जैसी है? हमारे बोल हमारे संकल्प उसके जैसे हैं? तो दिन प्रतिदिन हमारे में और उसमें समानता आनी चाहिए, और प्यार समानता में होता है। कोई भी दो दोस्त होते हैं तो समानता होती है उनकी, और एक दो को समझते हैं अच्छी तरह से। तो हमको भी दिन प्रतिदिन बाबा के शब्द और हमारे शब्दों में दिन प्रतिदिन समानता आती जानी चाहिए, तो फिर इस ज्ञान का हम अच्छी तरह से सुख ले सकते हैं। तो कितनी सारी बातें बताई बाबा ने। तीन प्रकार की होली कौन कौन सी? जलाने वाली होली। तो उस होली में क्या करना है? हमको योग के अलग अलग प्रयोग खुद ही तैयार करने हैं। सुनने में तो हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, सुननी चाहिए, और वो हमको जीवन में आत्मसात करने के लिए हमको उनके ऊपर और चिंतन करना है, और गहराई से कौन कौन से ऐसे हम योग के प्रयोग करें ताकि इन सारी पुरानी चीजों से मुक्त हो जाएं, ताकि हम प्रभु के रंग में हमेशा रंग रहे, ताकि उससे हम मंगल मिलन मनाते रहें। तो योग के बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हमको खुद ही तैयार करने हैं। जैसे योग अग्नि, बाबा ने कहा योग अग्नि से तुम अपने विकर्मों को भस्म करते हो, पुराने स्वभाव संस्कार को। तो ये दृश्य इमर्ज करना है कि योग अग्नि सामने इमर्ज है, सामने नहीं, ये योग अग्नि लगी हुई है, और पूरे बॉडी कॉन्शियस अर्थात देह अभिमान जलकर खाक को तैयार है, और मैं पूरा संपूर्ण फरिश्ता लाइट की काया में हूं, और मस्तक केंद्र में एक जगमगाती हुई ज्योति है, और जैसे ऊपर से ब्रह्मांड का मालिक है ना स्वयं शिव बाबा उतराया है, और मेरे सिर के ऊपर आके यहाँ बाप तदने आकर हाथ रख दिया है, और सारे विक्रम जैसे उसने खींच लिए एकदम, और उसकी सारी शक्तियां, ब्रह्मांड की भी सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा जा रही हैं, क्योंकि आत्मा तो उसी ब्रह्मांड की है ना। तो सारी वो अनुभूति हमें यहां होनी चाहिए, जैसे बाबा को यहां चिपका के रखना, जाने नहीं देना उसको बार बार। अगर जाए तो फिर पकड़ के चिपका देना, जाए तो फिर चिपका देने ऐसे, हैं? गम लगा देनी ऐसे, फेविक्विक लगा देनी, जोड़ मजबूत जोड़ है। तो बार बार ये सूक्ष्म है, क्योंकि मन तो भागेगा ही, तो अच्छे अच्छे संकल्प रखने हैं। या बैठे ना योग में तो हाथों में जैसे बाबा को पकड़ के कैसे, तो भी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा। आंखें हैं, आंखों में बंद कर लो, पांच मिनट के लिए पांच मिनट बाबा को आंखों में बंद करके रखा हुआ है। बाबा ने कहा नैनों में संभालू, तो प्रैक्टिकल में योग के नए नए प्रयोग करने हमको खुद ही। बाबा को जैसे मैंने मुख में पकड़ा हुआ है, कहां जाएगा बाहर वो, जैसे हनुमान जाता था ना उसके अंदर, वो बाहर निकला था। या श्री कृष्ण के मुख में गोला देखते थे, मक्खन का गोला, कौन सा गोला, विनाश विनाश दिखाई देता था। तो ऐसे योग के नए नए प्रयोग करने, ताकि हम पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होकर नए नए संकल्प क्रिएट होते रहे, नई नई रचना होती रहे, है ना। जैसे बाबा हर कर्म के साथ हमको ज्ञान जोड़ने के लिए संसार के उदाहरण देते हैं, तो उसी तरह योग में भी हमको हर कर्म करते हुए उसको योगमय कर्म बना देना है। कर्म करते हुए हमारा कर्म योगी जीवन हो निरंतर, क्योंकि बैठे बैठे खाली थोड़ा सारा दिन बैठे बैठ बैठ के योग करेंगे, ये तुम्हारा निरंतर योगी जीवन है ना। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते नाचते गाते हमेशा उसकी याद बनी रहे, तो नए नए तरीके से हम हर कर्म में बाबा के ज्ञान को इन्वॉल्व करेंगे, उसके जो योग के विभिन्न प्रयोग हैं उनको अमल में लाएंगे, तो जीवन में परिवर्तन संभव है। तो नवीनता लानी है, नहीं तो पुराने पुराने डर्रे पर ही चलते रहते हैं, उसी तरीके से मुरली सुनेंगे, उसी तरीके से थोड़ा बहुत सेवाएं भी जो भी कर ली हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। तो नए नए तरीके से आप डेली डेली अगर हम आलू खाते रहे तो क्या हाल हो जाएगा, एक ही आलू की कितनी वैरायटी बनाओ, आलू का हलवा बनाओ, आलू के बंद बना लो या और चिप्स बना लो, कई वैरायटियां हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो इस ज्ञान को भी हमको नए नए तरीके से, है ना, जैसे आज हम सोच रहे थे दूसरे तरीके से हम सुनाना सोच रहे थे, लेकिन ये तरीका दूसरा हो गया। हम सोच रहे थे इस मुरली में कितने पात्र हैं, आज कौन कौन से पात्र हैं इसमें, एक बाप है, बच्चे हैं, माया है, भक्त हैं, नामी ग्रामी आत्मा है, साइंसदान है, वेदपाठी हैं, और कौन कौन से ऐसे कितने है? समय है इसमें, है कौन उत्सव, हाँ उत्सव है इसमें, मेला है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से अगर जिसको वर्ल्ड मेथड कहेंगे, अगर कुछ शब्द भी हमको 15-20 मुरली के शब्द भी पकड़ में आ जाएं, तो भी मुरली धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाएगी। और जब मन बुद्धि भटके तो अगर वो शब्द हमारे हाथ में है तो ऑटोमेटिकली बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। समय के बारे में क्या क्या बोला बाबा ने, आज एक आदिकाल को भी याद किया, वर्तमान में उत्सव चल रहा है और अंत में क्या क्या होगा वो भी याद किया समय के बारे में। अंत में साक्षात्कार बाबा ने कहा तुम बच्चों को दिल तो होती है साक्षात्कार एक बार हो ही जाए, किस किस को दिल है साक्षात्कार होने की, किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए, हाँ माता जी ठीक बोल दे, बाकी नहीं है साक्षात हो जाए तो अच्छी बात है ना, वो उसमें नुकसान थोड़ा नहीं है। लेकिन साक्षात्कार के सिर पर बैठ नहीं जाना कि हमको वही होता रहे बार बार, क्योंकि ज्ञान ही वास्तव में साक्षात्कार है ये, हाँ फायदा नहीं है, लेकिन हो जाए तो नुकसान भी तो थोड़ा बाबा ने बताया। ये तो ठीक है आपकी बात की फायदा नहीं है, लेकिन बाबा ने ये भी तो नहीं बोला नुकसान है, नुकसान बोला तो हो जाना चाहिए ना, फिर उसमें क्या हर जाए कोई। एक बार परम धाम दिख जाए, नहीं देखो परम धाम तो दिखा नहीं अभी, दिखा किसी को परम धाम, कोई को दिखा भी होगा, अगर एक बार दिख जाए तो योग लगाना तो सहज हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा तो समय पर होता रहेगा, तो साक्षात्कार भी होता रहेगा। तो कितनी सारी वैरायटी हैं बातें, किस किस तरीके से हम मुरली को याद रख सकते हैं, अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी गोट तो नशा चढ़े, किस किस तरीके से हम मुरली को याद रखते हैं वो हमको स्वयं के ऊपर ही सोचना है। तो कितनी सारी बातें मुरली में, तीन प्रकार की होली हमारी विशेषताओं के आधार पर संसार में कैसे कैसे यादगार बनाते हैं, इस होली के कारण होली का रहस्य बताया कि कैसे तुम पुरानी बातों को भूल जाते हो, तुम्हारा मूड हल्का हो जाता है, बीती को बिंदी लगाते हो, पुरानी कोई भी बात याद नहीं आनी चाहिए, है ना, तुम मौजे ही मौजे मनाते हो, बेफिक्र बादशाह, बेप्रवाह बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेताज बादशाह, बेहद के बादशाह, पांच प्रकार के बादशाह हैं मुरलियों में, इसमें तीन ही बताए हैं, दो जो और हैं बेताज बादशाह और बेहद के बादशाह, ये और भी मुरलियों में अव्यक्तवाणियों में। तो ये सारी जो मुरली है ये हमारे लिए वास्तव में अभी बाबा का जो परिवर्तन हो गया है, हम तो एक ही संकल्प सोचते हैं हम डेली कि जो मुरली है ना यही अभी भगवान है, सीधी सी बात है। मुरली धर से प्यार अर्थात उसकी पढ़ाई से प्यार, तो जो चार पेज की मुरली है ये वास्तव में अभी हमारे लिए बाबा ही है, इसको जीवन में लाने का है। श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार है मुरली। मुरली को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। मुरली में क्या क्या बाबा ने बहुत सारी उसकी संज्ञाएं दी हैं, तो हमको उसके ऊपर खुद ही चिंतन करना। मुरली हमारा श्वास है, हमारा भोजन है, हमारी आंखों की रोशनी है, पढ़ाई है, ऊंच पद का आधार है। मुरली एक ऐसी लाठी है जो हमको स्वर्ग तक पहुंचा देगी। मुरली ऊंच पद का आधार है, मुरली एक आईना है, मुरली कंधों की लाठी है। तो हमको चिंतन करने की मुरली क्या चीज है, ये अलादीन का चिराग है, अमृत की धारा है। आज ही बोला ना, तुम शक्तिशाली ज्ञान का अमृत पीते हो, शुभी रस है। हाँ, आप पिलाते हो गुरुवार को, ठीक है। ओम शांति। हर बीमारी का इलाज है, हर मर्ज का इलाज। ओम शांति।